यह प्रवचन शीर्षक प्रचारक भगवान को परम प्रिय पर 3 दिसंबर 2004 को नई दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना वाला भाला धारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहागना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतम् परिजना साहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहागना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
आज मैं खास करके आप भक्तों से ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के विषय में चर्चा करना चाहता था। जैसे आप जानते हो दिसंबर के महीने में सारे विश्व में इस्कॉन के भक्त जुड़ते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में और वो प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। जैसे आप जानते हो प्रभुपाद जी ने प्रचार के कार्य पर सबसे ज्यादा बल दिया, इसलिए इस कार्य पर बल दिया क्योंकि परम भगवान स्वयं इस सेवा पर बल दे रहे हैं। अगर आप भगवद गीता पढ़ो तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अंत में क्या, याइदं परमं गुह्यं। सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो कि मेरे प्रचार में सहयोग देता है और उससे ज्यादा ना कोई हुआ है ना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इस विषय पर बल दिया। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने अपने सब साथियों को कहा था कि तुम उड़ीसा बंगाल के घर घर में जाकर प्रचार करो और उन्हें केवल रथ यात्रा के शुभ अवसर पर इजाजत प्राप्त हुई थी वापस जगन्नाथपुरी में लौटने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने लगभग 24 साल काटे जगन्नाथपुरी में और आज भी आप अगर वहाँ जाओ तो अनेक स्थानों में जा सकते हो जहाँ की महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने अपने साथियों को बोला था घर घर जाकर प्रचार करो और जैसे आपने सुना है एक जोड़ी बनी थी नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर की, और नित्यानंद और हरिदास को पता था कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, और उनकी इच्छा थी कि नवदेव के जो सबसे पतित व्यक्ति हैं उनका उद्धार किया जाए। और जब उन्होंने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो कई घरों में जब वो गए लोगों ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा आइए बैठिए शिक्षा दीजिए। कई स्थानों में वो गए जहाँ के लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला उनके लिए, और कई घरों में वो गए जहाँ के लोगों ने यह आरोप लगाया कि लगता है ये लोग जासूस है, हमारे घर में आ रहे हैं देखने के लिए कि अंदर हमने क्या क्या सामान रखा है। जब भी वो प्रचार करते गए तो हम भी आज के भक्तजन भी जब प्रचार के लिए जाते हैं कई तो उनका स्वागत करते हैं, कई तो आपके बुलाने पर उनके घर पहुंचने पर भी आपका आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, और कई दरवाज़ा खोलते भी हैं तो अपमान करके आपको बाहर निकाल देते हैं। तो हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव हुआ था किसका, नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर का। चैतन्य महाप्रभु जी एक समय जब हरिदास ठाकुर से मिले तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास ये बताइए कि किस प्रकार म्लेच्छों का और यावनों का उद्धार होगा। म्लेच्छ ब्राह्मण यावन उन्हें कहा जाता है जो कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी बड़े चिंतित है ये देखकर कि किस प्रकार इन पतितों का उद्धार होगा। तो हरिदास ने क्या कहा, कहा प्रभु चिंता न करिया, हे मेरे स्वामी आप चिंता मत करो, हा राम बालिक है राम भाषे। किसी न किसी रूप से अगर लोग हरि नाम को अपनाएं तो इसके द्वारा उनका उद्धार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं सब ने इस प्रचार के कार्य पर बल दिया, और ठाकुर भक्ति जी जिन्हें कि चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति माना जाता है, उन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित किया था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर। उन्होंने एक ग्रंथ भेजा था विश्व की सब बड़ी बड़ी महाविद्यालयों में। इसके पश्चात जब भक्ति सिद्धांत जी आचार्य बने तो उन्होंने भी इस विषय पर बल दिया, अपने शिष्यों को भेजते थे ग्रंथों के वितरण के लिए, और उन्होंने एक समय जब प्रभुपाद जी को मिले थे राधाकुंड में, उस समय कार्तिक का महीना था और भक्ति सिद्धांत जी हजारों भक्तों की ब्रजमंडल परिक्रम ले जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी उन्हें मिले राधाकुंड में, जहाँ की उन्होंने एक मृदंगा की तस्वीर बनाई और कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और बांटना। और उन्होंने कहा कि एक मृदंगा की तस्वीर बनाने के पश्चात ये सेवा है जिसका नाम क्या है, बृहद मृदंगा। साधारण मृदंगा की आवाज थोड़ी दूर तक पहुंच सकती है, पर जब आप ग्रंथ को बांटते हो उसकी आवाज हजारों मील दूर जा सकती है। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक समय हमारे भक्त, एक रशियन भक्त, एक पानी के जहाज में काम कर रहा था, तो पानी के जहाज ऑस्ट्रेलिया में गया। तो जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वो सेलर था, तो उस बाहर निकला जहाज से तो किसी ने उसे एक ग्रंथ बेचा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, वो पानी का जहाज पर चला ऑस्ट्रेलिया से और आया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब पहुंचा तो गए इस्कॉन के मंदिर में भक्तों को मिलने के लिए, वहां गए प्रसाद ग्रहण किया, एक दो और किताबें उन्होंने खरीदी, फिर वो वहां से वो पानी का जहाज निकला उनके देश रूस के लिए। और जब रूस में वो पहुंचे तो जाके भक्तों को मिले और उसके पश्चात उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। और ये परिचय कैसे हुआ, एक छोटे से ग्रंथ के द्वारा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। एक भट्टाचार्य खानदान है जो पहले अमेरिका में था, बहुत बड़े डॉक्टर थे उनके पति, पर अब वो रिटायर होके मायापुर में निवास कर रहे हैं, और उन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपए श्री श्री राधा माधव की सेवा के लिए अर्पण किया, समर्पण किया है। तो पिछले हफ्ते वो मेरे से बात कर रही थी, मिसेस भट्टाचार्य। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस्कॉन से जुड़े कैसे, आप पहले भक्त कैसे बने। तो उन्होंने मुझे कहा कि 35 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, वो अमेरिका गई थी, तो एक दिन वो अपने पति के साथ फिलाडेल्फिया गई घूमने के लिए। हाँ, और वहाँ उन्हें एक ब्रह्मचारी मिला, जवान अमेरिकन ब्रह्मचारी, कोई 18-19 साल की उम्र थी। और उसने उन्हें एक ग्रंथ दिया, तो उन्होंने शायद बैक टू गॉड मैगजीन थी, उन्होंने कहा, तो बैक टू गॉड मैगजीन वो ले गए। और 2 साल के लिए उन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं, मैगजीन ले ली और अपने घर में रख ली। 2 साल बाद उन्होंने वो बैक टू गॉड मैगजीन खोली एक दिन, और फिर उनको पता लगा कि इस्कॉन के अनेक मंदिर हैं, और एक मंदिर था फिलाडेल्फिया में उनके घर के पास। तो फिर उन्होंने मंदिर गए, वो मंदिर गए, मंदिर से और ग्रंथ लिए, फिर और ग्रंथों को पढ़ने लगे, और इसके द्वारा उनका इस्कॉन से संबंध जुड़ा। उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया, जप करना शुरू किया, और अब पूरे जीवन की कमाई उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार हजारों उदाहरण हैं सारे विश्व में कैसे लोगों के हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हुई है इन ग्रंथों के द्वारा। ये समझना भक्तों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आप एक दफा ये समझ जाओगे इन ग्रंथों के वितरण का महत्व, तो फिर आप हृदय से करोगे, है कि नहीं। अगर केवल आपको कहा जाए जाओ डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स, जाओ ग्रंथों को बांटो, तो आप जाओगे, पर अगर आप इसके पीछे जो भाव है उसको समझोगे, तो फिर आप हर परिस्थिति में आपकी इच्छा रहेगी आप इस सेवा में जुड़े रहो। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो भगवान का भक्त है, अगर उसे कुछ कठिन स्थिति में भी रहना पड़ता है, तो भी वो सेवा करना चाहता है, और सेवा करता है किसकी, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। जैसे कि प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था कि जब पार्वती ने शिव जी से पूछा, तो शिव जी ने कहा कि सबसे बड़ी उपासना है उनके भगवान विष्णु की सेवा करना, सबसे बड़ी सेवा, उनसे भी बड़ी सेवा है उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करना। तो इन ग्रंथों में हमें भगवान की वाणी प्राप्त होती है, और जो महान आचार्यों का तात्पर्य है या व्याख्या है भगवान की वाणी के विषय में, वो भी पढ़ने को मिलता है। जैसे कि मैंने अनेक समय आपको बताया है कि प्रभुपाद जी जब इन तात्पर्यों को लिखते थे, तो अपने सामने सारे प्रसिद्ध आचार्य के तात्पर्यों को रखते थे, और उनके तात्पर्यों के महत्वपूर्ण विषयों का निचोड़ लेते थे, साथ में फिर अपने विचारों को जोड़ते थे, और फिर उन्होंने सरल भाषा में ये प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा हम भगवान की व्याख्या को समझ, भगवान की वाणी को समझ सके। तो जब हम इन ग्रंथों को बांटते हैं और लोग पढ़ते हैं, तो जो श्रद्धावान है उनके हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है, और फिर साधु संगत के द्वारा और गहराई के साथ भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि रूपा गोस्वामी जी ने कहा है, और प्रभुपाद जी ने इस उदाहरण का उपयोग किया था आज के प्रवचन में, कि आरंभ में श्रद्धा होती है, श्रद्धा के द्वारा आपको संगत, साधु संगत प्राप्त होता है, साधु संगत के द्वारा भक्ति के विषय में ज्ञान मिलता है, और उसका जब आप पालन करो तो उसे कहा जाता है भजन क्रिया, और भजन क्रिया के पालन के द्वारा जो अनर्थ हैं या आध्यात्मिक जीवन के शत्रु, वो कमजोर होने लगते हैं। जैसे कि बीमार व्यक्ति दवाई लेने के द्वारा अपनी बीमारी को दूर करता है। तो अनेक पत्र हैं, अनेक स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, जिसमें प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बल दिया कि हमें, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो, मेरे ग्रंथों का वितरण करो। इस भावना से नहीं कि इनके द्वारा कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, इन ग्रंथों को बांटा जाता है एक रूप से देखा जाए लगभग नुकसान में, पर इस भावना से कि जो लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, इसके द्वारा उनका उद्धार होगा। कई बार हम सोचते हैं, हाँ हम ग्रंथों को बांट देते हैं पर कोई पढ़ता नहीं, ये गलत है। अगर एक व्यक्ति भी 10 किताबें आप बांटते हो, पढ़ेगा, उसके हृदय में आवश्यक ही आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होगी, और सारे विश्व में, भारत में तो खास करके लोग ज्यादा आदर देते हैं इन ग्रंथों को, क्योंकि इन ग्रंथों का महत्व उन्हें पता है, पर विदेशों में भी ये अनुभव है कि जब लोग इन ग्रंथों को लेते हैं और पढ़ते हैं तो इसके द्वारा उनकी आध्यात्मिक जागृति जिज्ञासा जो है वो बढ़ती है। तो हम सब भक्तों का यह एक प्रयास रहना चाहिए कि ये गीता जयंती के उपलक्ष्य ये जो दिसंबर के महीने में हम लोग बुक मैराथन करते हैं, हम सबको प्रयास करना चाहिए इस मैराथन में जुड़ने के लिए। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि मैराथन शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैराथन का अर्थ है सोना कम करना और खाना कम करना और ज्यादा समय लगाना। किस में ज्यादा समय लगाना? प्रचार की सेवा में। तो आज इस महीने सारे विश्व में इसको उनके जो भक्त हैं मैराथन में जुड़े हैं, सबकी ये सबका ये प्रयास है कि अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को बांटा जाए और इस विषय में सफलता प्राप्त होगी। और ये सफलता निर्भर होगी हमारे उत्साह के ऊपर, जैसे कि रूप गोस्वामी जी ने कहा है, उत्साह निश्चय धैर्यत तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सतोवृत्ति। सबसे पहले रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि भक्तों में उत्साह होना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है आपके दिल्ली भक्त, दिल्ली मंदिर के जो IYF के भक्त और दूसरे भक्त जब प्रचार में जाते हैं बड़े उत्साहित रहते हैं। इससे ये दिखता है कि अगर हम उत्साह के साथ प्रयास करेंगे तो भगवान हमें अवश्य की सफलता देंगे। जैसे भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो उसको मैं दूर कर देता हूँ और जो गुण है उसे रखता हूँ। जैसे एक समय 1977 में हमने बॉम्बे में एक बहुत बड़े बुक शॉप इंटरनेशनल बुक हाउस जो फ्लोरा फाउंटेन में है वहाँ एक महीने के लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का डिस्प्ले रखा था, आगे डिस्प्ले, अंदर डिस्प्ले, खिड़की में डिस्प्ले। पर एक महीने के बाद ये अनुभव था कि जितने ग्रंथ हमने सोचे थे बिकेंगे दुकानों से नहीं बिके थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे ग्रंथ बिकते हैं मेरे शिष्यों के उत्साह के कारण। तो आप सबका अनुभव है, अगर आप प्रचार करने जाते हो, किसी से चर्चा करते हो, उत्साह के साथ करते हो तो उसका अलग प्रभाव रहता है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने भी कहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह निश्चय धैर्य, एक उत्साहित होना चाहिए, दूसरा हमें दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि भक्ति के मार्ग में थोड़ी कठिनाई आई या कुछ असुविधा आई तो हम छोड़ कह दें नहीं 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 ये सेवा बहुत मुश्किल है, ये सेवा हम नहीं कर सकते। और धैर्य, हमें सहनशील होना चाहिए। तो जब ग्रंथों बांटने को जाते हो कहीं आपका स्वागत करेंगे, कहीं आपका अपमान करेंगे, कहीं आपसे बात भी नहीं करेंगे, पर हमें सहनशील रहना चाहिए और बिल्कुल दृढ़ होकर इस सेवा में जुड़ना चाहिए। तो हर साल आपके दिल्ली के भक्त और जैसे मैंने कहा इसको उनके हर मंदिर में हर कोने में ये मैराथन इस समय किया जा रहा है। तो हर साल आप भक्तजन प्रयास करते हो अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटने के लिए। हमारे जो लाइफ मेंबरशिप के भक्त हैं वो गीता दान करवाते हैं, गीता की स्पॉन्सरशिप कराते हैं और उसके द्वारा हम अलग अलग स्थानों में गीता बांटते हैं। और जो IYF के लड़के हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अलग अलग स्थानों में जाते हैं ग्रंथों को बांटने के लिए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता था कि आप सारे भक्त कृपा करके मैराथन में जुड़ो। ये मैराथन अभी शुरू हो गया है, मैराथन चलेगा महीने के आखिर तक। पिछले साल आप भक्तों ने कितने गीता बांटी थी और एक ग्रंथ जो आप बांटते हो उसे कम से कम 3 या 4 व्यक्ति पढ़ते हैं। तो अगर आप 50,000 गीता बांटोगे तो मतलब कम से कम 2,00,000 व्यक्ति भगवान की वाणी को पढ़ेंगे। और 2,00,000 व्यक्ति पढ़ेंगे तो कम से कम 10,000-20,000 लोग हरि नाम का जाप शुरू करेंगे। ये तो आवश्यक है कि जो व्यक्ति इन ग्रंथों को पढ़ता है वो महामंत्र का जाप शुरू करता है, पाप के कामों से दूर रहता है। एक अनुभव था मेरा पिछले साल 6 महीने पहले, एक स्त्री औरत थी जो कि हमारे मंदिर में आ रही थी रेगुलरली, टोरंटो में 16 माला कर रही थी। तो मैंने उसे पूछा भक्त कैसे बने, तो उसने कहा कि पिछले साल वो एक रद्दी की दुकान में गई थी, जैसे भारत में रद्दी के पुराने कागज वगैरह बेचते हो तो वहाँ सेकेंड हैंड बुक स्टोर हैं। तो टोरंटो में वो एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर में गई थी जहाँ की उसने एक बहुत पुरानी भागवत गीता जो मुड़ी हुई थी खरीदी बहुत सस्ते भाव में। तो गीता इतनी मुड़ी हुई थी कि वो पढ़ भी नहीं सकती थी। ठीक, वो कैनेडियन लड़की थी तो घर ले गई गीता को, उसने इस्त्री किया तो वो पढ़ सके। तो पढ़ने के बाद उसने जब शुरू कर दिया मंदिर आने से पहले, उसे पता भी नहीं था कि उस शहर में टोरंटो में इस्कॉन का कोई मंदिर है। उसने गीता को दो बार पढ़ा और दो बार पढ़ने के बाद उसने 16 माला का जाप शुरू कर दिया था सिर्फ गीता पढ़ने के द्वारा। एक समय एक हमारी रशियन शिष्य थी रशिया में, तो उसकी बेटी जेल में थी, तो उसने अपनी बेटी को जेल में रूसी भाषा की गीता भेजी पढ़ने को। तो बेटी ने जेल में पढ़ना शुरू किया, उसने दूसरों को पढ़ाया और वो जेल में 3 या 4 औरतें भक्त बन गई थी गीता पढ़ने के द्वारा। तो इस प्रकार अनेक अनेक उदाहरण हैं, पूरा ग्रंथ लिख सकते हो भक्तों के इस विषय में, अनुभव के विषय में। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप गीता मैराथन शुरू कीजिए, लोगों को ये इस विषय, इस ज्ञान की आवश्यकता के विषय में समझाओ। खास करके आज की स्थिति में जहाँ माया का इतना तेज प्रभाव है, अगर आप लोगों की सुरक्षा चाहते हो, सुख चाहते हो, तो ये गीता का उपदेश सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप आजकल देखते हो कि ईसाई क्रिश्चियन प्रचारक आपके लोगों के घर घर में जाने, दिल्ली हरियाणा पंजाब में बाइबल लेकर। तो अगर हम लोग घर घर जाएं गीता का उपदेश लेकर, तो इसमें क्या लज्जा की बात क्या है। भगवान खुद कह रहे मेरे जो मेरा प्रिय भक्त है उसे मेरा प्रचार करना चाहिए, और आपका प्रयास रहना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटने के लिए। और ये साल सारे ग्रंथ छप गए हैं, जैसे आप जानते हो ये ग्रंथ छपते हैं दिल्ली में ही, ओखला में, तो दूसरे शहरों में तो कई बार इन ग्रंथों का वहाँ पहुँचने में देर लग जाती है, पर दिल्ली में पूरा स्टॉक आपके पास है इस समय। तो आप सब जुड़िए इस मैराथन में, और ये साल हमें 50,000 से ज़्यादा करना चाहिए। पिछले साल कितना किया था, 50,000, तो ये साल आपको 50,000 से ज़्यादा ग्रंथ बांटने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक स्लोगन दिया था इस्कॉन के शुरुआत में, और वो स्लोगन क्या था किसे पता है? डबल एड। प्रभुपाद जी कहते थे हर साल पिछले साल के मुकाबले में दुगना प्रयास करो। तो ये साल वैसे डबल एड की दृष्टि से तो हमारी योजना होनी चाहिए 1,00,000 गीता बांटने के लिए। आप सब महारथी हो इस मंदिर में, कई महारथी हैं जो कि हर साल चमत्कार दिखाते हैं। मैं आप भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब बड़े उत्साह के साथ जुड़िए इस मैराथन में, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटिए। और जैसे आप जानते हो ये साल एक खास, क्या खास है इस साल? प्रभुपाद जी का 108वां जन्मदिन। तो ये साल इस्कॉन बॉडी ने यह निर्णय किया है कि हमें प्रभुपाद जी की महिमा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में प्रयास करना चाहिए इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो आप सबके पकड़ के जुड़िए इस मैराथन में। हरे कृष्णा।